एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक की बात करने वाले हैं, जॉन रॉल्स। अमेरिकी दार्शनिक थे और उनके विचारों ने खासकर न्याय और निष्पक्षता पर पिछली आधी सदी में हमारी सोच को बहुत गहराई से बदला है।
हाँ बिल्कुल, उनकी किताब आई थी 1971 में, ए थियोरी ऑफ जस्टिस, और उसने तो जैसे मतलब पूरे राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में एक नई जान फूंक दी।
सही कह रही हैं, उस समय कहा जाता था कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ गई थी।
हाँ कुछ हद तक, बड़े बुनियादी सवालों से लोग कतरा रहे थे, पर रॉल्स ने वापस उन बड़े सवालों को केंद्र में ला दिया। पूछा कि भाई एक न्यायपूर्ण समाज, एक फेयर सोसाइटी आखिर होती कैसी है, उसके सिद्धांत क्या होने चाहिए।
और ये सवाल तो आज भी शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी लगता है। हम रोज देखते हैं दुनिया में कितनी असमानता है, कितने टकराव हैं अधिकारों को लेकर। तो रॉल्स ने हमें सोचने का एक नया फ्रेमवर्क दिया, है ना?
हाँ बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं कि न्याय क्या है, बल्कि ये कि हम निष्पक्ष होकर फेयर तरीके से न्याय के सिद्धांतों तक पहुंचे कैसे। उनका जो मुख्य निशाना था वो उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म का एक मजबूत विकल्प देना था।
उपयोगितावाद, अच्छा, वो वाला विचार के जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, वही सही है।
हाँ वही, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन इसमें एक दिक्कत है जो रॉल्स को बहुत खटकती थी।
क्या दिक्कत?
कि अगर मान लीजिए ज्यादा लोगों की भलाई के लिए किसी एक छोटे समूह या किसी एक व्यक्ति के अधिकारों को कुचलना पड़े, तो क्या वो ठीक है?
नहीं, ये तो ठीक नहीं लगता।
रॉल्स को भी नहीं लगता था। वो मानते थे कि हर इंसान की अपनी एक गरिमा है, कुछ बुनियादी अधिकार है जो किसी बहुमत की भलाई के लिए भी छीने नहीं जा सकते।
तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि रॉल्स किस माहौल में सोच रहे थे ये सब। 20वीं सदी का मध्य था, दो विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुए थे।
हाँ माहौल बहुत उथल पुथल वाला था। विश्व युद्धों की छाया थी, तानाशाही हुकूमतें देखी थीं दुनिया ने, शीत युद्ध चल रहा था और अमेरिका के अंदर नागरिक अधिकारों का आंदोलन जोरों पर था। नस्लवाद, भेदभाव, ये सब बहुत बड़ी सच्चाइयां थीं।
और विचारों की दुनिया में आपने उपयोगितावाद का जिक्र किया।
हाँ उसका तो दबदबा था ही, साथ ही एक और धारा थी जो मानती थी कि नैतिकता, न्याय, ये सब व्यक्तिगत पसंद की बातें हैं, इन पर कोई वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव चर्चा हो ही नहीं सकती। रॉल्स ने इन दोनों ही विचारों को चुनौती दी।
क्या कोई खास घटनाएं थी जिन्होंने उनकी सोच पर गहरा असर डाला?
हाँ कई थीं। होलोकॉस्ट की खबरें थीं, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने खुद हिस्सा लिया, पैसिफिक में लड़े वो।
ओह, वो सैनिक थे?
हाँ पैदल सेना में। और कहते हैं कि हिरोशिमा पर जब बम गिरा, उसके बाद के जो हालात थे वो उन्होंने देखे।
बाप रे, उसका तो बहुत गहरा असर पड़ा होगा।
बहुत। कहा जाता है कि इसी अनुभव के बाद उनका धर्म से, खासकर ईसाइयत से, विश्वास उठ गया। और वो न्याय के ऐसे आधार ढूंढने लगे जो धर्म पर नहीं, तर्क और नैतिकता पर टिके हों। वो ग्रेटेस्ट गुड वाली बात उन्हें यहाँ बहुत खोखली लगी होगी।
समझ आता है, युद्ध ऐसी चीजें सोचने पर मजबूर कर ही देता है।
और एक और बात, उनकी निजी जीवन में भी एक दुखद घटना हुई थी। बचपन में उनके दो छोटे भाई थे, उनकी मौत हो गई।
ओह, कैसे?
उन बीमारियों से हुई जो शायद उन्हें रॉल्स से ही लगी थी, डिप्थीरिया और निमोनिया। रॉल्स को हमेशा इसका अपराध बोध रहा।
ये तो बहुत भारी बात है।
हाँ और शायद इसी वजह से वो जिंदगी में किस्मत की भूमिका पर इतना सोचते थे। मतलब क्यों कुछ लोग अच्छी सेहत, अच्छे हालात के साथ पैदा होते हैं और कुछ नहीं? क्या ये सब सिर्फ संयोग है? और अगर है तो क्या समाज को इसे ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए?
ये व्यक्तिगत अनुभव और दार्शनिक सवालों का जुड़ना वाकई दिलचस्प है। उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई?
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। और मजे की बात यह है कि कॉलेज में पहले वो पादरी बनने का सोच रहे थे।
अच्छा,
फिर क्या हुआ, वही युद्ध के अनुभव, रास्ता बदल गया। बाद में उन्होंने प्रिंसटन से ही फिलॉसफी में नैतिक दर्शन में PhD की
और फिर पढ़ाना शुरू किया।
हाँ पहले कॉर्नेल में, फिर MIT में, और उसके बाद तो लगभग 40 साल वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रहे 1962 से। और वहीं पर उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब ए थियोरी ऑफ जस्टिस पर सालों काम किया।
आपने कहा सालों, मतलब दशकों?
हाँ लगभग 20 साल लगे उसे लिखने और रिफाइन करने में।
20 साल? एक किताब पर।
बिल्कुल, वो बहुत ही मेटिक्यूलस थे, बहुत ध्यान से धीरे धीरे काम करते थे, अपने आइडियाज को क्लास में छात्रों के साथ डिस्कस करते थे, उनकी आपत्तियां सुनते थे, फिर उन पर सोचते थे, अपने तर्कों को और मजबूत बनाते थे। ये कोई एक रात में आया विचार नहीं था।
कमाल है। और सुना है वो थोड़े शर्मीले किस्म के इंसान थे।
हाँ, बेहद शर्मीले। पब्लिक में बोलना, इंटरव्यू देना, ये सब उन्हें पसंद नहीं था। वो मानते थे कि फिलोसोफर का काम है सोचना और लिखना, लाइमलाइट में आना नहीं। अपना काम करते थे और अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे।
चलिए अब उनके सबसे बड़े आइडिया पर आते हैं, न्याय के रूप में निष्पक्षता या जस्टिस एज फेयरनेस। ये क्या है?
देखिए, इसका जो मूल मंत्र है वो है निष्पक्षता, फेयरनेस। न्याय के जो भी सिद्धांत हम चुने वो निष्पक्ष होने चाहिए, किसी का फेवर ना करें।
ठीक है, पर निष्पक्षता लाएं कैसे? हम सब तो अपने अपने स्वार्थों, अपनी अपनी सोच से बंधे होते हैं।
यहीं पर रॉल्स का जीनियस काम करता है। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट यानी एक विचार प्रयोग सुझाया।
विचार प्रयोग? कैसा प्रयोग?
इसे वो कहते हैं मूल स्थिति या द ओरिजिनल पोजिशन। सोचिए कि हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक नया समाज बनाने के लिए। बिल्कुल शुरू से हमें तय करना है कि इस नए समाज के बुनियादी नियम क्या होंगे, न्याय के सिद्धांत क्या होंगे।
ठीक है, मान लिया।
ये किम एक पेंच है। हम सब एक अज्ञान के पर्दे यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं।
अज्ञान का पर्दा, ये क्या चीज है?
ये एक काल्पनिक पर्दा है। इसके पीछे हमें अपने बारे में कुछ खास नहीं पता। हमें नहीं पता कि जब ये पर्दा हटेगा तो हम समाज में कौन होंगे।
मतलब
हमें नहीं पता होगा कि हम अमीर होंगे या गरीब, आदमी होंगे या औरत, किस जाति या धर्म के होंगे, हमारा रंग क्या होगा, हम कितने पढ़े लिखे होंगे, हमारी सेहत कैसी होगी, हम में क्या टैलेंट होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता कि अच्छा जीवन किसे कहते हैं, इस बारे में हमारे विचार क्या होंगे।
अरे, तो अगर हमें कुछ पता ही नहीं कि हम कौन होने वाले हैं
तो
हम कैसे नियम बनाना चाहेंगे? लेकिन एक पेच है, हम सब एक अज्ञान के पर्दे यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं।
अज्ञान का पर्दा,
ये क्या चीज है?
ये काल्पनिक पर्दा है। इसके पीछे हमें अपने बारे में कुछ खास नहीं पता। हमें नहीं पता कि जब ये पर्दा हटेगा तो हम समाज में कौन होंगे।
मतलब?
मतलब हमें नहीं पता होगा कि हम अमीर होंगे या गरीब, आदमी होंगे या औरत, किस जाति या धर्म के होंगे, हमारा रंग क्या होगा, हम कितने पढ़े लिखे होंगे, हमारी सेहत कैसी होगी, हम में क्या टैलेंट होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता कि अच्छा जीवन किसे कहते हैं, इस बारे में हमारे विचार क्या होंगे।
अरे
तो अगर हमें कुछ पता ही नहीं कि हम कौन होने वाले हैं, तो हम कैसे नियम बनाना चाहेंगे? इस अज्ञान के पर्दे के पीछे हम सब कुछ खास सिद्धांतों पर राजी हो जाएंगे।
हाँ, उनका मानना था कि कोई भी रैशनल इंसान जो अपने भले के बारे में सोचता है, भले ही उसे पता ना हो कि उसका भला किस चीज में है, वो दो मुख्य सिद्धांतों पर जरूर सहमत होगा। पहला है स्वतंत्रता का सिद्धांत, लिबर्टी प्रिंसिपल।
स्वतंत्रता यानी आजादी।
हाँ, बुनियादी आजादियां, और वो भी ज्यादा से ज्यादा जितनी संभव हो सके, जैसे बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, अपनी मर्जी का धर्म मानने या ना मानने की आज़ादी, इकट्ठा होने की आज़ादी, वोट देने का अधिकार, ये सब। और ये सबको बराबर मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी आज़ादी किसी और की आज़ादी छीन ले। ये सबसे पहली ज़रूरत है। इसके साथ कोई समझौता नहीं।
ठीक है, ये तो समझ आता है, बिल्कुल बुनियादी बात है। और दूसरा सिद्धांत क्या है?
दूसरा सिद्धांत थोड़ा जटिल है। ये सामाजिक और आर्थिक असमानताओं, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के बारे में है। रॉल्स ये नहीं कहते कि समाज में कोई असमानता हो ही नहीं सकती, शायद थोड़ी बहुत हो, लेकिन वो तभी जायज होगी जब दो शर्तें पूरी हों।
अच्छा, क्या शर्तें हैं?
पहली शर्त है अवसर की उचित समानता, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि समाज में जो भी पोजिशंस हैं, जो भी ऑफिस हैं, खासकर वो जिनसे ज्यादा फायदा या ताकत मिलती है, उन तक पहुंचने के मौके सबके लिए बराबर होने चाहिए।
मतलब सिर्फ कानून में बराबरी नहीं।
नहीं, उससे आगे। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, बल्कि ये देखना होगा कि क्या वाकई सबके पास अपनी प्रतिभा को निखारने और कंपटीशन में उतरने का असली मौका है। क्या किसी गरीब घर का बच्चा भी अच्छी शिक्षा पाकर आगे बढ़ सकता है? उसकी पृष्ठभूमि उसके रास्ते का रोड़ा तो नहीं बन रही?
ये जरूरी बात है। और दूसरी शर्त, क्या यहीं पर वो अंतर सिद्धांत आता है जिसके बारे में काफी सुना है?
हाँ, बिल्कुल। दूसरी शर्त है अंतर सिद्धांत, डिफरेंस प्रिंसिपल। ये रॉल्स के दर्शन का शायद सबसे अनोखा और सबसे ज्यादा बहस वाला हिस्सा है।
बताइए इसके बारे में।
ये कहता है कि समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अगर हैं, तो उन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि उनसे समाज के सबसे कम लाभान्वित, लीस्ट एडवांटेज सदस्यों का सबसे ज्यादा भला हो।
एक मिनट, क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई ज्यादा कमा रहा है तो ये तभी ठीक है जब उससे उस आदमी का भी फायदा हो जो सबसे कम कमा रहा है।
हाँ, कुछ ऐसा ही। सोचिए, समाज में कुछ लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं या अच्छी किस्मत लेकर पैदा होते हैं, अमीर घर में जन्म होता है। रॉल्स कहते हैं कि ये जो टैलेंट है या ये जो अच्छी शुरुआत है, ये आपकी कमाई हुई चीज नहीं है। ये तो बस लॉटरी लगने जैसा है। नैतिक रूप से इसका कोई खास महत्व नहीं है।
मतलब अगर मैं बहुत होशियार हूं तो ये मेरी जसलोगा नहीं है।
रॉल्स के हिसाब से पूरी तरह नहीं, ये प्राकृतिक लॉटरी है, और क्योंकि ये बस किस्मत की बात है, इसलिए इस टैलेंट या अच्छी शुरुआत से होने वाले फायदे पर सिर्फ आपका हक नहीं बनता, समाज को, खासकर उन लोगों को जिन्हें किस्मत से कम मिला है, उन फायदों में हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए असमानता तभी जायज है जब वो सिस्टम ऐसा हो कि उससे सबसे नीचे वाले पायदान के लोगों की स्थिति भी सुधरे जितनी सुधर सकती है।
अरे बाप रे, ये तो हमारे आम सोच से बिल्कुल अलग है। हम तो यही मानते हैं कि जिसने मेहनत की, जिसमें टैलेंट था, वो आगे बढ़ा तो ये उसका हक है।
हाँ, ये मेरिटोक्रेसी के विचार को सीधी चुनौती है, और इसीलिए रॉबर्ट नोजिक जैसे जो स्वतंत्रतावादी विचारक थे, उन्होंने रॉल्स की इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई।
नोजिक, वो हार्वर्ड में ही थे शायद रॉल्स के साथ।
मेरा है, सरकार या समाज को कोई हक नहीं कि वो मुझसे लेकर किसी और को दे दे सिर्फ इसलिए कि वो कम लाभान्वित है। ये तो मेरे अधिकारों का हनन है।
तो ये एक बुनियादी असहमति है।
बिल्कुल,
कि प्रतिभा और उसके फल पर किसका अधिकार है, व्यक्ति का या समाज का भी।
हाँ,
रॉल्स का झुकाव समाज की तरफ ज्यादा था, खासकर सबसे कमजोर तबके के भले की तरफ।
तो अगर हम देखें, उपयोगितावाद में शायद व्यक्ति के अधिकार दब सकते हैं, स्वतंत्रतावाद में शायद समानता पीछे छोड़ सकती है, रॉल्स इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे।
हाँ, आप कह सकते हैं उनके लिए स्वतंत्रता सबसे पहले आती है, खासकर बुनियादी स्वतंत्रताएं, फिर अवसर की समानता, और फिर ये अंतर सिद्धांत।
ये उनका क्रम है।
ये सब विचार उन्होंने मुख्य रूप से ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिए। इसके बाद भी उन्होंने लिखा।
हाँ बिल्कुल, 1993 में उनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण किताब आई, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। इसमें उन्होंने एक अलग तरह के सवाल पर फोकस किया।
किस तरह का सवाल?
सवाल ये कि आज के जैसे समाज हैं, जहां लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग नैतिक विचार रखते हैं, जो कई बार एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं, ऐसे समाज में राजनीतिक स्थिरता कैसे कायम हो सकती है, लोग एक साथ शांति से कैसे रह सकते हैं।
हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी सवाल है आज के समय में।
यहीं पर उन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स दिए, ओवरलैपिंग कंसेंसस और पब्लिक रीजन।
ओवरलैपिंग कंसेंसस, ये क्या होता है आसान शब्दों में?
इसका मतलब है कि अलग अलग धार्मिक या दार्शनिक विचार रखने वाले लोग भी कुछ बुनियादी राजनीतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर सहमत हो सकते हैं, जैसे लोकतंत्र अच्छा है, मानवाधिकार जरूरी हैं, कानून का शासन होना चाहिए। हो सकता है इस सहमति पे पहुंचने के उनके कारण अलग अलग हो, कोई अपने धर्म की वजह से सहमत हो, कोई किसी और दर्शन की वजह से, कोई बस व्यवहारिक कारणों से, लेकिन वो एक कॉमन राजनीतिक जमीन पर सहमत हो जाते हैं। यही है ओवरलैपिंग कंसेंसस।
अच्छा,
और पब्लिक रीजन।
पब्लिक रीजन का मतलब है?
पब्लिक रीजन का मतलब है कि जब हम सार्वजनिक मुद्दों पर, जैसे कि नीतियां क्या होनी चाहिए, कानून क्या बने, इन पर बहस करें, तो हमें ऐसे तर्क देने चाहिए जिन्हें अलग अलग विचार रखने वाले सभी नागरिक समझ सके और सिद्धांत रूप में स्वीकार कर सके। हमें सिर्फ अपने निजी धार्मिक या गहरे विश्वासों के आधार पर तर्क नहीं देने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि दूसरे उन्हें माने। हमें साझे सार्वजनिक तर्क खोजने होंगे।
ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह लगती है आज के माहौल के लिए। कोई और खास किताब?
हाँ, 1999 में आई द लॉ ऑफ पीपल्स। इसमें उन्होंने कोशिश की अपने न्याय के सिद्धांत को देशों के बीच यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लागू करने की, और 2001 में उनकी आखिरी किताब आई, जस्टिस एज फेयरनेस अ रीस्टेटमेंट, जो उनके पूरे जीवन के काम का एक तरह से साल और स्पष्टीकरण था।
जाहिर है, इतने प्रभावशाली विचारों की आलोचना भी खूब हुई होगी। स्वतंत्रतावादियों की बात तो हमने की, और कौन थे आलोचक?
एक बड़ा समूह था समुदायवादियों का, जैसे माइकल सैंडल। उनका कहना था कि रॉल्स का जो अज्ञान के पर्दे के पीछे वाला व्यक्ति है, वो बड़ा ही खाली खाली सा है, उसकी कोई जड़े नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई समुदाय नहीं है।
मतलब
उनका तर्क था कि हम इंसान ऐसे नहीं होते, हम हमेशा किसी न किसी समुदाय, किसी परंपरा, किसी इतिहास का हिस्सा होते हैं, हमारी पहचान वहीं से बनती है और हमारे नैतिक कर्तव्य भी वहीं से जुड़े होते हैं। हम ऐसे हवा में तैरते हुए अपनी पहचान से कट कर निष्पक्ष फैसले नहीं ले सकते।
अच्छा, ये एक अलग नजरिया है।
हाँ, फिर नारीवादी विचारक थी जैसे सुजैन मुलर रोकिन। उन्होंने कहा कि रॉल्स ने समाज की बात तो की, लेकिन परिवार के अंदर जो न्याय या अन्याय होता है, स्त्री पुरुष की जो भूमिकाएं हैं, उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जबकि परिवार ही तो समाज की पहली इकाई है।
सही बात है।
और कुछ वामपंथी आलोचकों को लगा कि रॉल्स का सिद्धांत बहुत ज्यादा उदारवादी है। ये पूंजीवाद की व्यवस्था को जस का तस स्वीकार कर लेता है और जो गहरी आर्थिक सामाजिक संरचनाएं हैं असमानता की, उनको नहीं तोड़ता।
तो मतलब हर तरफ से सवाल उठे।
हाँ, और ये अच्छी बात है, दर्शन ऐसे ही आगे बढ़ता है। इन आलोचनाओं के बावजूद रॉल्स का असर तो जबरदस्त रहा है।
किस तरह का असर?
आप देखिए, फिलॉसफी में, पॉलिटिकल साइंस में, लॉ में, इकोनॉमिक्स में, हर जगह उनके आइडियाज पर चर्चा होती है। कई लोग तो कहते हैं कि आज पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप जो भी लिख रहे हैं वो या तो रॉल्स के समर्थन में है, या उनके विरोध में, या उनसे संवाद करते हुए है। आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते।
और क्या ये अकेडमिक दुनिया से बाहर भी आया?
हाँ बिल्कुल, उनके जो टर्म्स है, वेल ऑफ इग्नोरेंस, डिफरेंस प्रिंसिपल, ये अब आम बहसों में भी इस्तेमाल होते हैं। पॉलिसी डिबेट्स में, कोर्ट के फैसलों में भी कभी कभी इनका जिक्र आता है।
क्या उनके कुछ ऐसे कोट्स हैं जो उनके मुख्य विचारों को पकड़ते हों?
हाँ, कई हैं। एक तो उनकी किताब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस की पहली लाइन ही बहुत मशहूर है, न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है जैसे सत्य विचार प्रणालियों का।
मतलब
जैसे किसी थ्योरी के लिए सच होना सबसे जरूरी है, वैसे ही किसी समाज के नियमों या संस्थाओं के लिए न्यायपूर्ण होना सबसे जरूरी है। चाहे कोई संस्था कितनी भी एफिशिएंट क्यों ना हो, अगर वो अन्यायी है तो वो ठीक नहीं है, उसे बदलना होगा या खत्म करना होगा।
वाह, ये तो बहुत दमदार बात है।
एक और है जो उनके अंतर सिद्धांत की जड़ को बताता है। कोई भी व्यक्ति अपनी अधिक प्राकृतिक क्षमता का हकदार नहीं है और न ही समाज में अधिक अनुकूल शुरुआती स्थान का पात्र है।
वही किस्मत वाली बात।
हाँ, कि आपका टैलेंट या आपका अमीर घर में पैदा होना आपकी नैतिक कमाई नहीं है, ये बस संयोग है। इसलिए समाज में फायदे और बोझ का बंटवारा सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए।
और वो अज्ञान के पर्दे वाला।
हाँ, सीधा सा न्याय के सिद्धांत अज्ञान के पर्दे के पीछे चुने जाते हैं, ये उनके मेथड का सार है।
चलिए, अब रोल्स की जिंदगी से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें जानते हैं। हमने उनके शर्मीलेपन, युद्ध के अनुभव और भाइयों की मृत्यु की बात की।
हाँ, कहते हैं कि भाइयों की मौत के बाद जो अपराध बोध था, और शायद उसी वजह से उन्हें जीवन भर थोड़ी हकलाहट भी रही, इसने भी शायद उन्हें भाग्य और नैतिकता के सवालों पर सोचने को मजबूर किया।
ओ, हकलाहट भी थी।
हाँ, और एक बिल्कुल अलग बात, उन्हें बेसबॉल का बहुत ज्यादा शौक था।
बेसबॉल, जॉन रॉल्स को?
हाँ, कहते वो खिलाड़ियों के आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स सब याद रखते थे।
ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, एक इतने गंभीर दार्शनिक और बेसबॉल।
दिखाता है कि वो भी एक आम इंसान थे, अपनी पसंद नापसंद के साथ। उनका जो ऑफिस था हावर में, वो हमेशा किताबों और कागजों के ढेर से भरा रहता था, बिल्कुल एक प्रोफेसर का कमरा।
और एक शिक्षक के तौर पर कैसे थे?
उनके छात्र बताते हैं कि वो बहुत ही उदार थे, बहुत ध्यान से सबकी बात सुनते थे और छात्रों के सवालों को बहुत गंभीरता से लेते थे, भले ही वो कितने ही बड़े फिलोसोफर बन गए थे।
तो कुल मिला के रॉल्स ने हमें न्याय के बारे में सोचने का एक बहुत ही मौलिक, एक नया तरीका दिया, एक ऐसा तरीका जो व्यक्ति की आजादी को भी महत्व देता है और समाज में बराबरी लाने की भी कोशिश करता है।
हाँ, उन्होंने बहस का एजेंडा ही बदल दिया। उनका काम हमें एक विजन देता है एक ऐसे समाज का जो आजाद और बराबर के नागरिकों के बीच आपसी सहयोग पर आधारित हो, और ये सवाल पूछता है कि हम अपने समाज की संस्थाओं को कैसे डिजाइन करें कि वो सबके साथ, खासकर सबसे कमजोर लोगों के साथ निष्पक्ष हों।
और आज के समय में जब हम इतनी असमानता देखते हैं, इतना ध्रुवीकरण देखते हैं, तो शायद रॉल्स की तरह थोड़ा पीछे हटकर ठंडे दिमाग से तर्क और निष्पक्षता के आधार पर न्याय के बारे में सोचना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।
बिल्कुल, उनका काम एक तरह की चुनौती है हम सबके लिए। क्या हम वो अज्ञान का पर्दा ओढ़कर सोचने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या हम ऐसे नियम बनाने को तैयार हैं जिन्हें हम खुद भी मानने को राजी हों, चाहे समाज में हमारी कोई भी जगह क्यों ना हो? ये सवाल आसान नहीं है, पर रॉल्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
ये वाकई एक गहरा चिंतन है। न्याय की खोज के लिए शायद नैतिक कल्पना की भी उतनी ही जरूरत है जितनी तार्किक सोच की। रॉल्स का काम हमें यही याद दिलाता है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।